Hare कथा को श्रवण करेंगे। हम भगवान रामचंद्र के संबंध लीलाओं को हम नृत्य के रूप में या ड्रामा के रूप में हम बच्चों के द्वारा उनकी प्रस्तुतिकरण देखेंगे। वैसे ये राम कथा क्यों करनी पड़ी इधर, उसके पीछे कारण ये है। रामनवमी के समय जू में राम कथा के लिए मुझे निमंत्रण दिया गया था, तो जब प्राय रोज जाया करता था तो सब लोग बोलते प्रभु जी आप जू जाके करते, मिरर में करते, आप कहाँ का प्रेसिडेंट हो। तो बहुत सारे भक्त रोज कुछ ना कुछ बोलते थे, इसलिए तो इसलिए हमने सोचा कि इधर भी कुछ करेंगे। तो प्रसंग ऐसा आया कि बच्चों को भी कुछ भगवान राम से लीलाओं को प्रस्तुत करने की इच्छा हुई, हमने सोचा कि राम कथा किया जाए। लेकिन समय ऐसा था कि एक ही समय था अभी हमारे हाथ में, वह जगन्नाथ रथ यात्रा का पहले। जब राम कथा की घोषणा किया भक्तों ने कहा रोज अब जगन्नाथ कथा करना चाहिए, रथ यात्रा आ रहे, राम कथा कहाँ से आएगी। मैंने कहा ठीक है, जगन्नाथ जी और रामचंद्र के विषय बहुत गहरा संबंध है। वो ये है कि भगवान जगन्नाथ जी वो बार बार ऐसा हुआ करता था जगन्नाथपुरी में, समुद्र आके पूरा जगन्नाथपुरी को डुबा देता। और दूसरा था जगन्नाथ जी मंदिर में आराम से विहरण कर रहे हैं, भोगों का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन समुद्र का बहुत आवाज आ रहा था। दो कारण, इसके वजह से जगन्नाथ जी ने खबर भेजा रामचंद्र को कुछ करो। रामचंद्र ने कहा हनुमान को तुम जाके जगन्नाथ जी का सेवा करो। तब हनुमान जी जगन्नाथपुरी में हैं। और दूसरी बात यह है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हर अमावस्या हर पूर्णिमा को विभीषण स्वयं आके जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। रामचंद्र ने स्वयं कहा था इनको विभीषण को और उनके और प्रिय सेवक हनुमान, इन दोनों को जाके जगन्नाथ जी का सेवा करो। कहा भले मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में हूँ, फिर भी मेरा मूल स्थान जो है वह जगन्नाथपुरी। इस प्रकार इसलिए जगन्नाथपुरी को दशावतार क्षेत्र भी कहा जाता है और सारे चार संप्रदाय के आचार्य के मूल स्थान जगन्नाथपुरी है, सारे अवतारों के स्थान मूल स्थान जगन्नाथपुरी है। आखिरी में जब प्रथा होने के बाद वह एक दिन बचती है, उस दिन जगन्नाथ जी की कथा जरूर करेंगे। तो उन भक्तों को मैंने समझाया भगवान रामचंद्र के दो विशेष भक्तों को भगवान स्वयं रामचंद्र ने कहा तुम जाके जगन्नाथ जी का सेवा करो, इसलिए जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए हम राम कथा कहेंगे। राम कथा बहुत लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध है, कृष्ण से ज्यादा राम प्रसिद्ध है। वैसे दोनों एक ही भगवत तत्व है। प्रसिद्धि का कारण एक है कि भगवान रामचंद्र को समझना बहुत आसान है। रामचंद्र की जो लीला है बहुत सरल है, बहुत सहज है। राम तत्व भी बहुत सरल है, उच्चारण करना शब्द भी बहुत सरल है, इसे राम बोलना भी बहुत सरल होता है। और राम कृष्ण बोलोगे थोड़ा सा हम लोग को जिह्वा को बहुत थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, और राम लिखो तो लिखना एकदम आराम से, सब सीधा सीधा राम सब सीधा है, कृष्ण लिखो सब गोल गोल है। और राम का चलना जो है वो सीधा रहता है, उनका शब्द भी वो सीधा रहता है, उनका प्रत्येक कार्य बहुत सीधा रहता है। कृष्ण का प्रत्येक लीला टेढ़ा, उनका नजर भी टेढ़ा रहता है, खड़ा रहना भी टेढ़ा है, हर चीज टेढ़ा है। अयोध्या जाएंगे गलियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, वृंदावन जाओ गलियां टेढ़ी मेढ़ी होती, पता नहीं कृष्ण के छड़ी है वो भी टेढ़ा है, नजर भी टेढ़ा है, बोल भी टेढ़ा है, सब टेढ़ा है। इन दोनों में बहुत असलियत में एकदम विपरीत अंतर है, क्योंकि राम आके सबको दिखाए कि मनुष्य कैसे व्यवहार करना चाहिए, दिखाया। लेकिन कृष्ण स्वयं दिखाए कि भगवान कौन होते हैं, हु इज गॉड। भगवान रामचंद्र मनुष्य रूप में आए, मनुष्य जैसे व्यवहार किया, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए उसको सिखाया। और भगवान कौन होते हैं, भगवान कैसे जीते क्या करते हैं, वो कृष्ण स्वयं दिखाया। भले एक ही तत्व है दोनों, लेकिन फिर भी उनका कार्य में हर चीज में एकदम 180 डिग्री है, एक ये बात हुई थी दूसरी बात, एग्जैक्ट ऑपोजिट, दोनों में मेल जोल कहीं भी दिखता नहीं। तो राम कथा, भले ही हम इसका नाम रखा राम कथा, थोड़ा सा एक कथा रूप में से ज्यादा थोड़ा सा तत्व के विषयों पर चर्चा किया जाएगा, खास करके हमारे जो जीवन कैसे जिए, कैसे हमारे व्यवहार होना चाहिए, उसके विषय में ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि भगवान रामचंद्र के गुणों को वर्णन किया गया है। सबसे पहला अध्याय में भगवान रामचंद्र का गुणों को वर्णन किया, ऐसे आप सबको मालूम है 6 कांड है, 6+1=7 कांड है रामायण का। तो ये पहला कांड का पहला अध्याय में प्रश्न पूछा गया था कि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए अस्मिन् सांसतिं लोके, अभी इस लोक में जीवित होना चाहिए वो गुणवान वीर्यवान इत्यादि कुछ गुणों को पूछते हैं, इत्यादि गुणवान कौन है। उसका जवाब में नारद जी भगवान रामचंद्र करके हैं और उनके गुणों को वर्णन करते हैं, यानी भगवान रामायण का इंट्रोडक्शन भगवान के गुणों के द्वारा हुआ है। दूसरा, ये पहला कांड जो है बाल कांड, उसके बाद जो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का दो पहले के जो दो अध्याय है उनमें से रामचंद्र के गुणों का बुरी बुरी मात्रा में वर्णन हुआ है, यानी दूसरे शब्दों में रामायण का मुख्य भाग है भगवान रामचंद्र के गुण और उनके विषय में सुनना और उन गुणों को हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हम जिन जिन के साथ में रहते हैं उनको उन गुणों को प्रोत्साहन करना। देखिए, व्यक्ति का सबसे बड़ा संपत्ति होता है उनका गुण, भले वो कितना भी धनवान भी क्यों ना हो, अनेकों अनेकों प्रकार के कुछ ऐश्वर्य उसका प्राप्त क्यों ना हो, अगर उनके अंदर दिव्य गुण नहीं है उनको समाज में कोई इज्जत नहीं, उनको मनुष्य नहीं कहा जाता है। इसलिए हम कुछ या आज के दिन या कल 2 दिन तक भगवान रामचंद्र की गुणों के ऊपर और हमारा एक दूसरे के व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा जोर देते हुए कुछ कथाओं को मात्र चर्चा करेंगे। वैसे रामचंद्र के लीलाओं को कौन नहीं जानता है, प्राय सभी जानते हैं, यह नूतनस्य, भले ही हम इनको बार बार सुने हैं और जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमको भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं हैं हमेशा नया नया लगता है। तो थोड़ा सा हम हर रोज जब मिलेंगे ये गुणों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हुए, एक दूसरे के व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देते हुए भगवान रामचंद्र की लीलाओं को थोड़ी थोड़ी अंश मात्र में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी ये पूरा राम कथा जो है 24,000 श्लोक में रामायण जो है वो एक हफ्ते में खत्म होने वाला नहीं है, ना हम खत्म होने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान पूर्ण होने के नाते उनके जो लीलाएं हैं उनको लीलाओं को वर्णन करने वाले ग्रंथ भी पूर्ण हैं, और पूर्ण को कभी पूर्ण तरीके से वर्णन नहीं कर सकते। पूर्ण का वर्णन जो है अपूर्ण ही हो सकता है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हम समय काल के परिस्थिति के पाबंद में, इसलिए ऐसा कहे मैंने रामायण को पूरा कर दिया इसका मतलब गलत है। अगर कोई मैंने भगवद्गीता को पढ़ लिया पूरा हो गया तो गलत है, अगर कोई भागवत को मैंने पूरा कर लिया तो गलत है, पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अंश मात्र में थोड़ी बहुत जितना हो सके उतना चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे राम कथा के विषय में जुहू में मुझे कहने के लिए निमंत्रण दिया गया था तो सबसे पहले मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा क्यों प्रभु जी आपको करना है, मैंने कहा कि तो बड़े बड़े वक्ता हैं, ऐसे राम कथा को वर्णन करने वाले बड़े महाराज है और अनेकों अनेकों जो खास करके उत्तर भारत से हैं वो बचपन से ही जन्म से ही राम कथा को सुने हैं, उनके सामने मैं राम कथा कहना उचित नहीं है क्योंकि रामायण कभी पढ़ा नहीं है, राम के बारे में इतना जानकारी भी नहीं है। जानकारी तो छोड़िए, जब भी रामायण शुरू होता था तो मुझे ऐसा लगता कि अभी मेरी दादी माँ कहती थी राम की कथा कहती थी, अभी कृष्ण के बारे में राम को मत करो, पता नहीं बचपन से ऐसा राम के प्रति उतना आकर्षण नहीं है, लेकिन ऐसा कारण हो सकता है उनको सीता को भेज दिया धोबी की बात सुन के, या इस प्रकार की बातें थी, राम के विषय में उतना हजम नहीं होता था। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र का विग्रह स्वयं मूर्तिमान विग्रह उपस्थित जो में चलो राम सुंदर की आज्ञा है तो हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो मीरा रोड में जब चर्चा हुई या राम कथा कहने के विषय में हुआ तो मैंने अपने मन में संकल्प किया चलो राम कथा इधर करेंगे। ये उद्देश्य ये था कि राम कथा करने के द्वारा एक आचार्य है गोविंद आचार्य कत्व ने कहा राम कथा जो कहता है और सुनता है खास करके हनुमान को ध्यान कहता है वो निश्चय रूप में विजयी होता है, विजय होता है, हर कार्य में उसको सिद्धि प्राप्त होती है। अतः मंदिर बनाने का कार्य बाकी है तो उसे सिद्धि के लिए जो भी कहता है जो भी सुनता है। तो इसलिए राम रामायण में कुछ ऐसे श्लोक है कुछ मंत्र है जिसको मंगलाचरण के रूप में आपको दिया है जिसको विजय मंत्र या सिद्धि मंत्र से युक्त कुछ श्लोक है प्राय रोज हम या रोज हम चर्चा करेंगे इसको मंगलाचरण के रूप में चर्चा करेंगे या उच्चारण करेंगे। ये हिंदी में कल दूंगा मेरे पास वो कागज नहीं रहा ये सब इंग्लिश में मुझे मिला तो इसलिए मैंने मंगलाचरण इंग्लिश में लिखा है कल आपको हिंदी में देने का प्रयास करूँगा। तो ये मंगलाचरण के श्लोक उच्चारण करके तो रामायण में हम प्रयास करने का प्रवेश करेंगे।
ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ನಿರಾತ್ಮಜಂ ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕಿ ಶೋಕನಾಶನಂ ಕಪೀಶಂ ಮೋಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾಭಯಂಕರಂ ಉಲ್ಲಂಘಸಿಂಧೋಖಲಿಲಂ ಸಲೀಲಂ ಯಹ ಶೋಕವಹ್ನಿಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಃ ಆದಾಯ ತೇನೇ ವೃದಾಹಲಂಕಾಂ ನಮಾಮಿದಂ ಪ್ರಾಂಜಲಾಂಜನೇಯಂ ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತಕರಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಉಪಮಾನನಂದನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಆಶ್ರವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಕೃತವೃತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ನಿಹಗರ್ಣಾಂಜಲಿಸಂಭುಟೈರಹರಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರವೃತ್ಯಾದರಾತ್ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ವದನಾರವಿಂದಕವಿತಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಮಧು ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಚರಾ ವಿಪತ್ತಿಮರಣಾತ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಭದ್ರವಂ ಸಂಸಾರ ಸವಿಹಾಯ ಗಚ್ಚತಿ ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ಪದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಅದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿಯೋಗಂ ಸಮೋ ಮುದ್ರೋಪಗತ ತಾತ್ರ ವಾಕ್ಯಬದ್ಧಂ ರಘುವರ ಚರಿತಂ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತಂ ಅಸಶಿರಶ್ಚವದಂ ನಿಶಾಮಧ್ಯಂ ವಾಲ್ಮೀಕೇ ಗಿರಿ ಸಂಭೂತ ರಾಮಸಾಗರ ಗಾಮಿನಿ ಪುನಾದು ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯಂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದಿ ಶೋಕಸಾರಸಂಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ಅಂಧಗ್ರಾಹ ಮಹಾಮೀನಂ ವಂದೇ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣವಂ ವೇದವೇದ್ಯೇ ವರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೇ ದಶರಥಾತ್ಮಜೇ ವೇದಾ ಪ್ರಾಕೇತ ಸಾಕಾಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತಂ ಸಮುದ್ರಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ಈರಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೇವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೇ ದತ್ತಂ ಮುನಿಭ್ಯೇ ಫಲಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿ ವಿಪ್ರವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ರಾಮೇ ಭೂಷಿ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುತಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವತಲಯೋ ತಾನೇ ಕುಪೋಣೇಷು ಚ ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವೀಷಣಶ್ಚೈವರಾತ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್ ಮಧ್ಯೇ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಕಲಮನತ್ಕಾಯ ದೇವ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಮೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ರುದ್ರೇಂದ್ರೇಭ್ಯೋ ನಮೋಸ್ತು ಚಂದ್ರಾರ್ಕಮೃತ್ಯುನೇಭ್ಯಃ।
अस्त्र जेताम रामो लक्ष्मणश्च महावधः राजा जेतु सुग्रीवो राघवेण विपालितः आसोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शुक्रसैन्यानां निहन्तामनुपात्मज न रावणं सहस्रं मे कृते प्रतिफलं भवेत् शिलाभीतो बृहत्तः पादपैः च सहस्रः अर्थयित्वा बृहिन्लङ्काम् अभिवादयेत् च मैथिलीं समृद्ध्यर्थो गमिष्यामि विशतां सर्वक्षसाम् धर्मात्मा सत्यन्दश्च रामोदाशर्यीर्यति पौरुषो च प्रचन्दद्वस्त्वं तेनेदम् रावणीम् आमदाम भर्तारं दातारं सर्वसंपदां भूताभिरामं श्रीरामं भुजो भुजो नमाम्यहं तव स्वाध्याय निरतं तव श्रीराघवदाम्बरं नारदं परिप्रपच्य वाल्मीकिमुनिगुण्डवं रामायणं
रामकथा रामायण वैसे का प्रवचन नहीं होता रामायण का, रामायण को गाया जाता है। राम का चरित्र को सबसे पहली बार स्वयं भगवान रामचंद्र के पुत्रों ने गाया, तो राम कथा गान रामायण को गान किया जाता है। पारंपरिक तरीके से रामायण को तीन ट्यून में गाया जाता है, जो लवकुश ने पहली बार गाया। लवकुश ने पहली बार रामायण को राम के सामने गाया था, लेकिन रामायण कुछ श्लोकों को पहली बार लवकुश के मुख से स्वयं भगवान रामचंद्र ने सुना। तो ये तीन श्लोक या चार श्लोक है, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप अगर नोट्स देखोगे, पहले के एक चार श्लोक है जो लवकुश ने राम को सुनाया। कब सुनाया आप सबको मालूम है, भगवान रामचंद्र सीता को वनवास के पास भेज दिया, लवकुश का जन्म हुआ और लवकुश वाल्मीकि के आश्रम में वो वेद सारे वेदांग इत्यादि सब सीखे और वाल्मीकि ने लवकुश को रामायण सुनाया सिखाया, 24,000 श्लोकों अस्त कराया। उस समय जब राजसु यज्ञ करने के लिए बैठे थे रामचंद्र, पत्नी के बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता, इसलिए पत्नी को पत्नी कहा जाता है क्योंकि धर्म पत्नी है, पति के कोई भी धार्मिक कार्य में सहयोग देने वाली है पत्नी। इसलिए जब भी शब्द आता है धर्म भार्या नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। तो भगवान रामचंद्र की पत्नी है सीता और वो पत्नी के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता और पत्नी का एकमात्र कार्य है पति के धार्मिक कार्य में उनको सहयोग देना। अभी पत्नी नहीं है तो क्या करे, एक सोने की मूर्ति को बनाया सीता को और बैठा के उधर यज्ञ किया। उस समय एक अश्व को भी भेजा गया था, पूरा संसार में सब लोग रामचंद्र की आधिपत्य को स्वीकार किया। अश्व घूमते घूमते जब वापस अयोध्या आ रहा था उस समय वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा, तो वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश खेल रहे थे, तब अश्व को पकड़ लिया। उनको क्रोध इसलिए आया क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था अश्व के ऊपर, किसी का अगर साहस है तो इस अश्व को बंदी बना ले, अगर किसी को कुछ साहस है इस अश्व को बंदी बना ले। लवकुश इस शब्दों को देख के बहुत क्रोधित हो गए, क्रोध इसलिए था कि संसार में ऐसा अहंकारी व्यक्ति कौन है इस प्रकार लिख सकता है। तो बंदी बना लिया, सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, किसने बंदी बनाया किसने बंदी बनाया। और लक्ष्मण के पुत्र चंद्रहास आके तुरंत बोले लगा कि अश्व को वापस दे दो बच्चों, ये बच्चे थे, कहा कि बच्चे ने कहा लवकुश ने कहा हम वापस नहीं करेंगे। तो उन्होंने पूछा जानते हो यशु किसका है, तो उन्होंने कहा लव ने कहा यशु जो है मैं हम नहीं जानते, जो भी इस अशु को भेजा जो इस प्रकार लिखा है ना, इतना अहंकार व्यक्ति जो है इस संसार में जीना नहीं चाहिए। तो बहुत लोग आए, जानते हो यशु किसका, यह राम का है। उसने कहा अच्छा वो राम का है, इनको बंदरों का सहायता लेना पड़ा। राम को तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, ऐसे बहुत सारे बातचीत हुआ। आपने कहा कि अच्छा वो राम जो छुप के बंदर को मारा था, अभी लव कुश कभी उत्तराखंड नहीं मालूम, उनको मालूम नहीं है कि लव कुश दोनों वो राम के पुत्र हैं और राम ने सीता को त्याग किया, उसे किसी नहीं मालूम। अभी इधर इस प्रकार की बातचीत में बहुत क्रोधित होकर सारे राम के जो सैनिक सब लोग बोले लगे, इतना ही मत इस प्रकार बोलते राम सिंह के विषय में। लव कुश शांत हो गए, हम भी राम के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, बड़े लोग होते हैं उसका चरित्र विचार नहीं करना चाहिए, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अभी अश्रु को हम छोड़ेंगे नहीं, राम के विषय में और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अश्रु को हम छोड़ेंगे। भाई दुआ धुआंधाम दुआ एक के बाद आए, इतना हद तक हनुमान है। अभी हनुमान के विषय में लोग कुछ जानते हैं, इतना शक्तिशाली है, उनसे युद्ध करना उचित नहीं। और दूसरा क्या है, हनुमान जो हमारे हीरो के साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। देखिए हम थोड़ा मजा लेते हैं हनुमान के विषय, तो हनुमान है और अश्व को मान लाई का लव कुश ने क्या किया, रामायण सुनाना शुरू किया, राम का गुणों को गाना शुरू किया। और जहां जहां रघुनाथ कीर्तन रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां रघुनाथ कीर्तन होता है भगवान राम की हनुमान जी पहुंच जाते, वो भी भजन करें, लोग कीर्तन करते हैं। अभी हनुमान जी खो गए एकदम, बिल्कुल राम के खो गए, उसमें स्वयं रामचंद्र आए। रामचंद्र आए उस समय तो लव कुश पूछा कि राम आप ही हो, राम ने कहा हाँ मैं राम हूं, यश को छोड़ दो। तब राम ने पूछा आप राम के बारे में जानते हो, कहा हम जानते हैं रामायण जानते हैं, तब सुनाओ बालकांड के अंतिम चार श्लोकों को सुनाए। पहली बार रामचंद्र ने रामायण स्वयं सुना, क्या हुआ रामचंद्र देखते हैं राम ये श्लोकों को सुनते हैं। सीता तो सी प्रिया तो सीता रामस्य रामस्य धारा पितृका इव। सबसे पहला नवकुश कहते हैं प्रिया तो सीता रामस्य, राम के लिए सीता अत्यंत प्रिय है और सीता के लिए रामचंद्र अत्यंत प्रिय है, और इन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो किस प्रकार कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे प्राप्त हुआ उनका प्रेम, पितृकृता आदिवा। सबसे पहला राम ने सीता से प्रेम इसलिए किया क्योंकि पितृकृता उनके पिता ने आशीर्वाद दिया आज्ञा दिया, तब राम ने सीता जी से विवाह किया। दूसरी बात गुणा, सीता जी के गुणों के प्रति अत्यंत आकर्षण भगवान राम से। और तीसरा रूप गुणात् सीता जी का सौंदर्य, पितृकृता इनका दाम्पत्य जीवन, राम और सीता का दाम्पत्य कैसे शुरू हुआ पितृकृता, और गाढ़ हुआ जब सीता के गुणों को देखे रामचंद्र और सीता की सुंदरता को देखे, इतना उनके बीच अभी प्रीति ही भूयो अभिवर्धते, प्रीति भूयो अभिवर्धते, भूयो मतलब बार बार दिन पर दिन उनका प्रीति बढ़ते बढ़ते गया। पितृकृता गुणा रूप गुणा, अभी इसी में एक आप समझ सकते हैं लौकिक बात, लेकिन रामायण में प्रत्येक अक्षर में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए उसका एक एक सूक्ष्म तत्व उनको मालूम पड़ता है। अभी पहले श्लोक जो रामचंद्र सुने उनके हृदय में ऐसा एक झटका जैसा लगा, तो उनका पूरा रामायण स्मरण में आया, पूरा राम का चरित्र समझ आया, किस प्रकार पितृकृता सीता स्वयंवर जनक और दशरथ महाराज की उन दोनों की अनुमति से सीता को स्वीकार किया, सीता के दिव्य गुणों को देखे रामचंद्र ने सीता के इतना प्रेम और उनका रूप को देखे इतना प्रेम, भूयो भी अभिवर्धत है, प्रेम बढ़ते ही है हर रोज बढ़ते ही। रामचंद्र सीता के वियोग ये कैसे हुआ है उसका वर्णन रामायण में आता है। अशोक वृक्षों से पूछ रहे थे कि अशोक ने सीता को देखा, हे दुष्ट ने सीता को देखा, पति के वियोग में पति किस प्रकार तड़पता है भगवान रामचंद्र दिखा है सारा जगत को। रामचंद्र को ये सब बातें याद आई, अभी क्या परिस्थिति है रामचंद्र का, वो स्वयं राम ने क्या किया सीता को
वनवास में भेजते हैं। अभी पहली बार प्रिया तो सीता रामस्य धारा पितृपिता की, ये आजकल लोगों का विवाह होता है, लेकिन विवाह पितृपिता नहीं है, पिता के अनुमति से नहीं होता है, यही जुड़ी समस्या है। बिना माता पिता का आज्ञा के विवाह करना ये समाज का सबसे बड़ा प्रदूषण है। कोई व्यक्ति एक इंसान मनुष्य मनुष्य जैसे रही नहीं सकता जब तक उनका विवाह आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ ना हो। अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं है वो विवाह विवाह नहीं है, वो केवल दो लोग साथ में रहने में रहते बस उतना ही। जैसे जानवर का विवाह होता है क्या, नहीं होता है, तो पितृपिता बाद में गुणा बाद में रूप गुणा। लेकिन आजकल क्या है, उल्टा है, पहले रूप गुणा, पहले रूप को देखती है दूसरी को, हाँ बहुत सुंदर हो चलो साथ। बाद में गलती से देख लिया तो गुणों को देख लेते हैं, अच्छा स्वभाव है, नम्र है, सहनशील है, वो सब गुणों को देखते नहीं। और थोड़ा आगे बढ़ गए तो चलो माता पिता का आशीर्वाद देने जाएंगे तो भाग जाएंगे। रामचंद्र स्वयं लव कुश से ये पहला श्लोक उन्होंने सुना, फर्स्ट श्लोक हर वे रामचंद्र और राम बाद में तस्य च भार्या द्विगुणात्र हृदय परिवर्तते, हृदय परिवर्तते, सीता जी हृदय में द्विगुणा, जो रामचंद्र सीता से जितना प्रेम करते थे द्विगुणा दो गुण सीता ने राम से प्रेम करना प्रेम किया। अंतर्गतम वाक्यम आख्याति हृदयम, और उन दोनों के बीच में ऐसा प्रेम का संबंध था, ये को क्या चाहिए क्या सोच रहे हो बोलने की आवश्यकता नहीं था। हृदयम हृदा, हृदयम हृदा, रामचंद्र के हृदय में एक भावना उत्पन्न होती है और उस भावना को समझ जाती है, उनके हृदय में प्रकाश हो जाता है। ये कम्युनिकेशन है, आजकल कम्युनिकेशन में बोलते कि आप बात करो, बात करने की आवश्यकता है, जब एक दूसरे के प्रेम है, इतना प्रेम है अगर है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके हृदय में एक भावना उत्पन्न है कि कुछ ऐसा मुझे चाहिए या ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, ऐसा बोलो तो अच्छा है, तुरंत दूसरा व्यक्ति बोल लेता है, वो सुन ले समझ जाता है, बिना बोले बात को समझ जाना, इसको प्रेम कहा जाता है। इसे उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कैसा था, हृदय हृदय, आजकल मैनेजमेंट में कहते हैं टॉक स्ट्रेट, बैठ के सामने सामने बैठ के बात करो, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। पहला जो है हृदय हृदय से कम्युनिकेशन होता है, पहला कम्युनिकेशन आप टू आंख, बाद में आंखों के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, बाल में जो है वो शब्द से शब्द रूप में कम्युनिकेशन होता है। तस्य च भर्ता द्विगुणात्, भर्ता से द्विगुणा सीता है प्रेम, तस्य भूयो विशेषेण मैत्री जनकात्मजा, तस्य भूयो विशेषेण मैत्री जनकात्मजा, देवता भी समरूपो सीता इव रूपिणः, श्री इव रूपिणः। अभी सीता जी क्या कौन है, श्री इव रूपिणः, साक्षात लक्ष्मी है। वैसे जब राम और सीता उनका प्राकट्य हुआ, जब लीला कर रहे थे, रामचंद्र एक साधारण मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे, सीता जी एक साधारण स्त्री के रूप में सबको शिक्षा दे रही, कैसे पत्नी को विवाह करना चाहिए वो शिक्षा देने के लिए एक जीव के रूप में, साधारण जीव एक पत्नी के रूप में सीता जी प्रकट हुई। लेकिन इधर कह रहे कौन, लव कुश राम को कहते हैं, सीता कौन है, श्री इव रूपिणः, वो साक्षात लक्ष्मी जैसे हैं। बाद में आखिरी श्लोक में कहते हैं, या चार श्लोक में, जो आखिरी छोटा श्लोक में, तया अस राजा ऋषिसुतो अभिकामया रामे दिवान उत्तम राज कन्या, उत्तम राज कन्या, बड़े उत्तम राजा की कन्या है, यानी जनक जी की कन्या है, अतीव राम सुशोभिता, गुणान्वित हो राम जी, सुशोभित हो रहे, और किसकी वजह से सुशोभित हो रहे, सीता जी साथ में है ना, इसलिए राम जी सुशोभित हो रहे। विभु श्री विष्णु इव
हमारे ईश्वरा सारे देवताओं के ईश्वर के रूप में भगवान रामचंद्र सुशोभित हो रहे। क्यों सुशोभित हो रहे थे? सीता के साथ में और विष्णु जैसे दिखाई पड़ रहे। क्यों रामचंद्र? क्योंकि सीता जी साथ में है। ये बात सुनकर रामचंद्र तुरंत इतार स्वरूप सुनकर बेहोश हो गए। क्या था बेहोश होने का कारण? क्या ऐसी सीता को मैंने क्या कर दिया? मैंने कहां भेज दिया वनवास में? ये खाली स्मरण करके उस दिव्य जो राजपट्टाभिषेक हुआ था या सीता जी को वापस लेके आए रामचंद्र जी उस समय ये जो उनके बीच में प्रेम का व्यवहार सुन के रामचंद्र के हृदय में अचानक सीता का वियोग हुआ। वो वियोग के कारण रामचंद्र जी एकदम बिल्कुल बेहोश। बाकी सबसे मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो क्या रामचंद्र जी को। किसी न किसी तरीके से रामचंद्र को लेके गया वापस और सब आश्चर्यचकित हो गए। क्या सुनाया है जो दो बच्चों ने? तो सुनने मात्र से रामचंद्र की आंखों में आंसू हो गया। सीता का वियोग अनुभव करते हैं रामचंद्र बेहोश हो गए। जो रावण सीता को अपहरण किया था उस समय रामचंद्र रो रहे थे, शोक मना रहे थे, लेकिन बेहोश ये शक्ति चार श्लोकों में। यानी दूसरे शब्दों में आचार्य कहते हैं ये रामायण का जो सबसे अद्भुत प्रसंग है राम सीता को साथ में सुशोभित होते हुए सारा प्रजा को देख रहे दर्शन का ये जो सीन है सीता राम का जो वैभव है उनका प्रेम है। ये ऐसा बाण है जिसके द्वारा लव कुश ने राम को हरा दिया। लव कुश को और कोई बाण की जरूरत नहीं था। अश्व को बंदी बना लिए राम को हरा दिया जस्ट ही फेट। क्यों? क्योंकि सीता का वियोग अनुभव किया। ऐसी सीता जिसके वजह से मैं सुशोभित हो रहा था यानी मेरी शोभा को मैंने छोड़ दिया। मैं कैसा व्यक्ति हूं? कैसा व्यक्ति सीता का स्मरण करते राम से योगोश। ये पहली बार रामचंद्र रामायण को सुना तो ही हुआ। अभी बात यह है कि लव कुश प्राय जाया करते थे कहां? अयोध्या। अयोध्यापुरी में जाके रामायण को गाते थे। ऐसे रोज उनका प्रथा थी क्योंकि नजदीक में अयोध्या वाल्मीकि के आश्रम और आश्रम से थोड़ी देर जाना कुछ दिनों के लिए गा के वापस आश्रम में आना चाहिए। लव कुश के विषय में वाल्मीकि देखा। अभी मैंने लव कुश को तो सारा वेद सिखा दिया। बड़े सुंदर बालक है दोनों और इनके अंदर इतने अद्भुत गुण हैं और खास करके वाल्मीकि को मालूम थी दोनों को निकालक है वाल्मीकि। और उन्होंने देखा है लव कुश जो है सतु मेधा विनो दृष्टवा सतु मेधा विनो दृष्टवा। उन्होंने देखा क्या देखा? ये दोनों बच्चे जो है मेधावी है यानी इनके मेधस इतना तीव्र है अगर मैं एक बार कुछ कह दूं तो समझ जाएंगे और स्मरण रखेंगे। सतु वेदामिनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठतो निष्ठितो वेदेषु परिनिष्ठितो सारा वेद को जान लिए इतने छोटे बच्चे हैं। उस समय लव कुश का प्राय 7-8 साल का बस इतना उससे ज्यादा नहीं था। वेदेषु परिनिष्ठितो सारा वेद दोनों ऐसा सीख एक बार सुनाने सीख गया वापस सुनाने क्या जरूरत है परिनिष्ठित हो और साथ साथ उनका आचरण परिनिष्ठित हो उनका निष्ठा उनका आचरण में इतना अद्भुत था। मैंने सोचा वेदोपबृंहणार्थाय सोचा अभी मुझे उन्हीं वेदों जो वेद सबके लिए उपलब्ध नहीं है केवल विजों के लिए ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन्हीं लोगों के लिए वेद है अन्य लोगों के लिए वेद नहीं है। जो श्रुति गोचरा श्रुति गोचरा स्त्री और शुक्र है वो श्रुति गोचर श्रुतियों को नहीं पढ़ सकते। तब और दूसरी बात यह है कि ये वेद का मंत्र जो है उनका अर्थ जो है सारे जगत में सबको समझ में आए वेदोपब्रह्मार्थाय। तो रामायण को वाल्मीकि ने लव कुश को क्यों सुनाया? ताकि वेदों का अर्थ जो है सबके सामने प्रस्तुत हो स्पष्ट रूप में प्रस्तुत हो। इसलिए क्या किया? तो अग्रहाय प्रभु क्या किया? इन दोनों को बुलाया और सिखाया। अब काव्यम रामायणम कृत्सम सीताया चरितम महत् वेदोपब्रह्मार्थाय
वेदों का सार अर्थ को निकाल के, निचोड़ निकाल के रामायण को सुनाया। किसको सुनाया? वाल्मीकि ने लवकुश को सुनाया। और काव्यम रामायणम कृतम, यह रामायण है क्या कोई पूछे? कोई कहे राम कथा है, दर्द है। कोई कहे रावण वध है, जैसे कहा गया औलस्त्यम वदमिति एवं चकार चरितम चरितवतः, औलस्त्यम वदः नहीं, रावण का वध है, रावण का स्टोरी है, राम का स्टोरी है नहीं, वो किसी का भी स्टोरी नहीं, सीता का स्टोरी है। इसलिए कहा सीताया चरितम महत्, सीताया चरितम महत। कौन है सीता? सीता कहां से उत्पन्न हुई? आचार्य ने कहा सीता उत्पन्न हुई जमीन से, पृथ्वी से। पृथ्वी तो क्यों क्षेत्र बोला जाता है, वैता भगवान कहते हैं इदम क्षेत्रम इदम शरीरम क्षेत्रम इत्यादि, ये जो शरीर है क्षेत्र है, और भूमि को भी क्षेत्र कहा जाता है। और सीता जी कहां से उत्पन्न हुई? वो क्षेत्र यानी भूमि से उत्पन्न हुई। और कैसे उत्पन्न हुई सीता जी? जब जनक महाराज ने यज्ञ के लिए हल चलाया था, वो क्या है हल? वो है वैदिक वेदों का विचार। जब शास्त्रों के ऊपर विचार करता है और विचार करते हुए अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करता है, तब आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। इसी का वचन वेदों पर ब्रह्मत्ता है। वेदों में दो भाग है, पूर्व भाग उत्तर भाग। पूर्व भाग में क्या है? पूर्व भाग में कर्म है। उत्तर भाग में क्या है? ज्ञान है, उपनिषद ज्ञान है। उपासना कांड और कर्म कांड जो है वो कर्म हमारे कर्तव्यों के विषय में, और उत्तर भाग में क्या है? ज्ञान है। तो इस क्षेत्र जो शरीर के द्वारा हमको दो कार्य करने हैं, क्या हम अपना कर्म करना है, कर्तव्य करना है, और साथ साथ में क्या करना है? शास्त्रों का फल से मंथन करना है। जब शास्त्रों को बार बार अध्ययन करेंगे, भगीता भागवत को बार बार अध्ययन करते हुए जब हमारा इस शरीर को अपने कर्तव्यों को करते जाएंगे, तो क्या होगा? आत्मज्ञान का प्रकाशन होगा। सीता जो है वो आत्मा है। रावण कौन है? मन है। ये मन जो आत्मा को हरण कर लेता है। और हनुमान जी कौन है? गुरु है। ये सब बातें रामायण में है, लेकिन संस्कृत में पाए बताए जा रहे हैं ये रामायण कुछ और नहीं है, हमारा जीवन है, इट इज आवर लाइफ। जैसे कहा गया पौलस्त्यम वदमिति परम चकार चरित्रवदः, सीताया चरितम महत्, सीता का चरित्र है तो असल में हमारा चरित्र। इसलिए रामायण जो है न राम की कथा है, न रावण वध है, वो सीता का चरित्र है, या दूसरे शब्दों में हमारा चरित्र है, इज आवर लाइफ। जीवन क्या है मालूम करना है, रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की अविद्या, ये दोनों संपूर्ण रूप में रामायण महाभारत में प्राप्त होता है। देखिए हम बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाई करते हैं। लव कुश दो बच्चे ने कहा कि कैसे विवाह कैसे होना चाहिए, पितृपिता बाद में गुणात बाद में रूप गुणात, एक लाइन भी हम पालन नहीं कर पाते, क्या फायदा बड़ी बड़ी विद्या का? रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, सब कुछ आ जाता है। इधर काव्यम रामायणम कृतम सीताया चरितम, ये सीता का बहुत विस्तार से वर्णन करते हुए कहा गया, सीता कुछ और नहीं हमारी आत्मा है, सब सोच। सीता का प्राकट्य कैसे हुआ? कर्म यज्ञ के रूप में किया जाए, भगवान को अर्पण करते हुए किया जाए, और दूसरा क्या है? शास्त्रों को मंथन करते जाए, करते रहेंगे, गीता भागवत की मंथन करते रहेंगे, आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। सीता प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद सीता को किससे जुड़ा गया है? अगर कोई कहे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वो काफी नहीं है। सीता जन्म लेने के राम का इंतजार कर रही है, वो स्वयंवर है, वो सीता स्वयंवर में उनका बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इधर सीता आया चरितम आया, इसके थोड़ा सा जरूरत है। किस प्रकार सीता का एकमात्र उद्देश्य था, किस प्रकार राम से हमारा विवाह, राम भगवान भगवान रामचंद्र, और हमारा एकमात्र कर्तव्य है किस प्रकार भगवान से हमारा मिलन, और किस प्रकार भगवान से किसको हम भगवान किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए, जैसे सीता ने स्वीकार किया, किस रूप में? पति के रूप में स्वीकार किया।
अध्यता कर्तव्य है इत्यादि बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बात देखिए सीताया चरितम, ये सीताया चरितम केवल सोचिए सीता को, ये और कोई चरित्र है, ये हमारी है, इट इज आवर लाइफ। रामायण पढ़ना चाहिए, जैसे लव कुश रोज पाए जाए करते थे, तो खबर मिला रामचंद्र को, खास करके भरत से खबर मिला, दो बच्चे हैं जब रामायण गाते हैं ना तो क्या होता है कि पूरा अयोध्या में सभी लोग आके सुनने लग जाते, पूरा रोड जाम हो जाता है, रोड पे गाते और जहां जहां गाते तो सब लोग के मुग्ध हो जाते हैं कि घर में बोल के आऊंगी, पांच मिनट आता हूं तड़का लेके आता हूं, तो कभी वो आते ही नहीं। पूरा शहर में हल्ला हुल्ला हो रहा है कि दो बच्चे जो है इतना मोहित होकर रामचरित को गा रहे हैं। तो समय ऐसा था कि अगर मान लो कि सुबह बाजार से सामने से आ रहा है तो इधर से आप जा रहे हो राम का दर्शन करने के लिए, अगर वो पूछता है कि क्या राम का दर्शन किया, उससे बोला नहीं दर्शन किया, तो ठीक राम का दर्शन किया। इस प्रकार की भाव जो राम का नाम नहीं लेता है उसको उसको तो देख भक्ति ही नाम पदार्थ माश्रोषम, उसके उसको देखो मत, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है उसको देखो ही मत, मंत्रक्षम क्षीण पुण्यान तो कोई पुण्य ही नहीं, भक्ति नाम पदार्थ जो कृष्ण का नाम भगवान रामचंद्र का नाम नहीं सुनता है, कथा नहीं सुनता है, मां शौशन उसके बारे में सुनो, उसके नाम ही मत सुनो, उसे नाम सुन लो जाके नहाना, ऐसी अगर बात है तो आजकल तो हमको हर क्षण नहाना पड़ता। तब इस प्रकार रामचंद्र को ऐसा खबर मिला, आयोजन था बीच में लव कुश और एक बड़ा सिंहासन के ऊपर रामचंद्र जी बैठे, इधर बीच में लव कुश रामायण को गाना शुरू किया, फर्स्ट परफॉर्मेंस पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ रामायण पंडाल परफॉर्मेंस पंडाल प्रोग्राम, जैसे गाना शुरू किया सब लोग जैसे मरा हुआ शरीर होता है गिरता नहीं, इस प्रकार के सब लोग खोए हुए को कहां है क्या है अयोध्या में है कौन राज्य में कौन में कौन हो सब बोले कंप्लीटली लॉस्ट, अभी प्रजा के गोल में बैठ के देख लिए, लेकिन राजा है राजा होने के नाते थोड़ा दूर में सिंहासन में ऊंचा बैठे हैं रामचंद्र जी, क्या हुआ उनका परिस्थिति, धीरे धीरे से रामचंद्र सीट में बैठे हिमासन के ऊपर इतना मुग्ध हो गए, थोड़ा थोड़ा सा खिसकने लगे, थोड़ा धीरे खिसकने लगे, भूभूषया आसक्तमन भूहा, तो क्या हुआ कुछ समय के बाद उनके राम के सैनिक होंगे वो देखे सिंहासन खाली है, तो कहा है रामचंद्र वो एकदम बिल्कुल एक सामने लव कुश के सामने जाके बैठ के आसक्तमन हाथों में सांसू गिर रहा है और सब लोग लव कुश जो रामायण कह रहे हैं तो उनपे वो मुक्त हो गए और रामचंद्र धीरे 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 से खसक के आगे देखे भूषा, भूषा मतलब क्या है, मतलब ऐसा सुनने लगे कि ये जो राम कथा जो चल रही है इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूं, आई एम लिविंग, मैं का तो इतनी जीता है उसको रामचंद्र ने इस प्रकार राम कथा को श्रवण किया। ये राम कथा की श्रवण की महिमा इतना है कि स्वयं भगवान रामचंद्र आके उतना आशा से सुनते हैं ताकि वो सोचते हैं कि मेरा जीवन ही यही है, दिस माय लाइफ। ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग ने सुनाया लव कुश और रामचंद्र के बीच में जब रामायण की बात हुई। देखिए वेदार्थम वेद प्रकट हुआ रामायण के रूप में, जब वेद प्रकट हुए वेदों में उपनिषद प्रकट हुआ, उपनिषदों में ईशोपनिषद प्रकट हुआ, ईशोपनिषद में कहा गया है ईशावाश्रितम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेर तृप्तेन भुंजेताम मागड़क तस्य सिद्धनम। उपनिषद की वाक्य में मंत्र में बात आता है कि भुंजेताम भोगो, दूसरा क्या करो तेर तृप्तेन, क्या करो। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आप इस संसार को भोगो, कुछ लोग कहते हैं इस संसार को त्याग करो, लेकिन उपनिषद कहता है इस संसार को क्या करो त्यागते हुए भोग करो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, त्यागते हुए भोग करना भोगते हुए त्याग करना, ये भोग और त्याग का संबंध में उपनिषद है, रामायण भी वही है। और वही बात रामायण के बाद कृष्ण स्वयं आए और भगवदगीता में उसी बात को कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, जो वेदों में बात है उसी बात को रामायण में कहा गया है, वही बात को भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र ने सिखाया हमको कैसे जीना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को कैसे पालन करना चाहिए। बाकी तीनों ने दिखाया, लक्ष्मण भरत क्षेत्र ने दिखाया कैसे भक्ति करना चाहिए। देखिए हम मनुष्य होने के नाते कर्तव्य होते हैं, हम सोचते हैं हमारा कर्तव्य जो है वो भक्ति से विपरीत है या वो भक्ति से मेलजोल नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति और ये कर्तव्य दोनों विपरीत है, नहीं। भगवान रामचंद्र भगवान स्वयं चार रूप में प्रकट होके इस बात को सिखाया, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जीना कैसे चाहिए और भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति के अलग अलग भाव कैसे होते हैं, उन्हें इन चार रूपों में प्रकट होकर दिखाया। इसलिए राम लक्ष्मण भरत चित्र, इसके विषय में थोड़ा हम श्रवण करते हैं क्योंकि वेद जब कुछ कहता है, जो भी बातें वेदों के द्वारा हमको प्राप्त होता है, वेदों का बात जो है आदेश की जैसा रहता है। जैसे एक मालिक मतलब मास्टर अपने सेवक को कहता है, एक ऑर्डर करता है करो, लेकिन लोगों को ये बात जो है हजम नहीं होती। अगर कोई जाके आपको कहता है करो, ऑर्डर देता है, ऑर्डर देता है तो मुझे ऑर्डर दे, इसे सब लोगों को हजम नहीं होता है। इसलिए वेदों का वाक्य जो है एक बड़े कठोर होता है, सही है सत्य है लेकिन कठोर तरीके से प्रस्तुत किया गया वेद, यू डू इट, ऐसा करना है। लेकिन पुराणों की बात होती है, एक मित्र दूसरे मित्र को जिस प्रकार कहता है उस प्रकार रहता है, कर दे रहा है, मित्र का बात सुनिए कर देता है। कभी कभी इतना कठोर होता है व्यक्ति का हृदय कि इतना मित्र जैसा बोलने के बाद भी उनका हृदय पिघलता नहीं है। इसलिए काव्यों की आवश्यकता होता है, इसलिए रामायण को आदि काव्य कहा गया है, काव्य रामायण पुराण शैली भी नहीं है, सबसे सरल संस्कृत अगर कोई भी काव्य में अगर कुछ है तो रामायण आदि काव्य है, सबसे पुरातन है, सबसे पहला काव्य है, लेकिन सबसे सरल संस्कृत अगर कहीं भी कोई भी शास्त्र में प्राप्त होता है रामायण मात्र में प्राप्त होता है। कोई हिंदी भाषा थोड़ी सी भी अच्छी आती ना, अगर वो रामायण पढ़ ले अनुवाद भी ना हो तो समझ जाएगा, थोड़ी प्रयास करना बस। काव्य और काव्य का शैली क्या होता है, एक प्रिया प्रियतमा को कहता है, कहती है, जैसे एक पत्नी पति को कहती है कुछ काम निकालना हो, कहती है जरा कर दीजिए ना, तो करना ही पड़ता पति। एक मास्टर एक सर्वेंट को कहना वेद का वेद वेद की शैली है, पुराण की शैली कैसा है, एक मित्र दूसरे मित्र को कहने वाली बात है, तो ये प्रिया अपनी प्रियतमा को कहती है, उस प्रकार काव्य की बात है। तो इस प्रकार उनको ये रामायण बताया गया है, अभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आप सबको मालूम है
जन्म की लीला, भगवान रामचंद्र की जन्म लीला। जन्म की लीला को विस्तार से हम कल कहेंगे, या विस्तार से बात है थोड़ा सा उसके पीछे ऋषि सिंह की स्टोरी हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है यज्ञ हो गया, यज्ञ होने के बाद पात्र में एक खीर दिया, भगवान स्वयं प्रकट हुए यज्ञ पुरुष के रूप में, और उस पात्र में वो बड़े विस्तार से 3 मील लंबे थे। दशरथ को ये पात्र दिया, उन्होंने कहा कि अपनी पत्नियों को खीर बांटो। दशरथ कैसे बांट, इतना बड़ा है मैं कैसे, आपके लोग और मेरी पत्नी 3 है, उनको कैसे दूंगा। लेकिन एक दिन पुरुष से प्रार्थना किया ऋषि सिंह ने, एक दिन पुरुष साधारण सा रूप में प्रकट हुए और एक पात्र देश के अंदर खीर था। दशरथ को 60,000 साल तक कोई पुत्र नहीं, पुत्र शोक में बहुत दुखी थे, पुत्र नहीं है, शोक नहीं कह सकते इसको, पुत्र नहीं होने का बहुत दुख था। मैंने सोचा कि इससे पुत्र होंगे, विवाह किया एक से नहीं हुआ, दूसरे से किया नहीं हुआ, ऐसे 300 पत्नियां थी दशरथ, हम उनके 3 तो महिषी थी, अन्य बहुत सारे थे लेकिन उनमें से 3 प्रमुख हैं तो महिषी, कौशल्या सुमित्रा कहके 3 महिष, और उनमें से कौशल्या जो है पत्नी है, बाकी 2 भारिया है। दशरथ जी जब यज्ञ में बैठे थे कौशल्या के साथ बैठे थे, सुमित्रा कहके नहीं थी, सुमित्रा कहके दूर में थी। इससे पता होता है पत्नी का अर्थ क्या है, जो धर्म में यज्ञ में भाग लेती है और बोलती है पति पति को तुम्हारा कर्तव्य यज्ञ करना, अस्तित्व में वही पत्नी है, नहीं तो पत्नी नहीं है। पति का एकमात्र कार्य है पति को धर्म की मार्ग में लेके आना, अगर वो नहीं कर पाती है अपनी जो पतित्व पत्नीत्व का जो पोजिशन उसमें फेल हो रही। हमेशा ये विचार होना चाहिए हर एक पत्नी को, मेरे पति को कैसे लाऊंगी, कैसे धर्म की कार्य लगाऊंगी, ये नहीं कि जाके मांगना वो लेके आओ ये लेके आओ ये करो वो करो, नहीं तो उनको पति नहीं पत्नी नहीं कहा जाता, टॉप मोस्ट ड्यूटी। अब इधर यज्ञ का खीर प्राप्त हुआ, जब खीर प्राप्त हुआ तो दशरथ ने सोचा मैं अपनी 3 महिषियों को कैसे बांटूं, तो सबसे पहले उस खीर को आधा भाग किया, आधा भाग करके कौशल्या को दिया, और जो आधा बचा हुआ था उसने जो आधा भाग किया और उस आधा भाग को सुमित्रा को दान किया। अभी तीसरी पत्नी है कैकेयी, और तीसरी पत्नी को आधा जो बचा हुआ यानी 1/4 जो बचा हुआ वो दे है, तो सुमित्रा और कैकेयी को समान हो जाएगा, वो ठीक नहीं करके दशरथ ने क्या किया, जो बचा हुआ था यानी पौना 1/4 बचा हुआ था उसको और आधा भाग किया यानी 8वां भाग, तो 1/4 जो बचा हुआ था उसका 1 भाग जो है कैकेयी को दान किया, और जो उसमें आधा और बचा हुआ था यानी 1/8 जो बचा हुआ था वापस उन्हें सुमित्रा को दिया, यानी सुमित्रा को 2 बार प्राप्त हुआ, कौशल्या को आधा प्राप्त हुआ और कैकेयी को 1/8 प्राप्त हुआ, सुमित्रा को 1/4 प्लस 1/8 प्राप्त हुआ यानी 2 बार प्राप्त हुआ। अभी कुछ समय के बाद इन 3 महिषियों से 4 पुत्र प्रकट हुए। नवमी के दिन दोपहर के समय भगवान रामचंद्र कौशल्या के तरफ से, और अगले दिन सुबह दशमी के सुबह के दिन कैकेयी के प्रतिधर्म से प्रकट, और दशमी के दोपहर को लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रकट, किसके तरफ से, सुमित्रा के तरफ से। अभी देखिए जब हम गिनेंगे इन 4 भाइयों को किस प्रकार वो जन्म लिए, कैसे कैसे गिनेंगे, सबसे पहले किसका नाम किस कौन कौन प्रकट हुए, राम, बाद में भरत, बाद में लक्ष्मण क्षत्र, लेकिन हम क्या बोलते हैं राम लक्ष्मण वृक्षत्र, राम लक्ष्मण कहां से वृक्षत्र क्यों है, ऐसा क्यों है, अगर जिसका जन्म होता उसके लाइन में प्रकट राम भरत लक्ष्मण क्षत्र को होना चाहिए, राम भरत राम लक्ष्मण वृक्षत्र क्यों बोलते हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत है, एक सुंदर घटना भी है, पहले घटना बताऊं लीला बाद में गाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन उसके स्वतंत्र चर्चा किया जाए। जैसे 4 का प्राकट्य हुआ, 4 बच्चे एकदम बिल्कुल
चारों के चारों रो रहे हैं। हर एक महिषी का अपने अपने अंतःपुर रहता है। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इन तीनों का अलग अंतर में बच्चे रो रहे धूल पी रहे। ऐसा रोना माँ परेशान, क्या करे। सुमित्रा ने बहुत सोचा, क्या करे। चलो मैं जाके मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कौशल्या के पास जाऊंगी, मेरी बड़ी बहन जैसी है वो कुछ इलाज बताएगी, दो बच्चों को रो रहे हैं तो दोनों बच्चों को लेके सुमित्रा जाके जैसे कैकेयी के कौशल्या के अंतरपुर में गई। उधर राम भी रो रहे हैं, जोर 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 से रो रहे हैं और कौशल्या बहुत परेशान। सुमित्रा ने क्या किया, इन दोनों बच्चों को राम के बाजू में सुलाया और अपनी व्यथा कहने के लिए आई। क्या हुआ, अचानक इन दोनों बच्चों को जैसे सुलाया सुमित्रा ने, राम और लक्ष्मण हंस रहे और तुरंत कौशल्या गई राम को दूध पिलाने लगी और इधर सुमित्रा जो है वो विचार करने लगी, ये क्या हो गया, अचानक दोनों बिल्कुल हंस रहे मजे ले रहे और ये बाजू जो है अभी भी शत्रु में जो है अभी रो रहा है। शत्रु का रोना बंद नहीं हुआ, सुमित्रा ने तुरंत उनको दूध पिलाया लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को लेके वो गई देखने के लिए कैकेयी के साथ क्या हो रहा है। तो कैकेयी के अंतपुर में गई, उधर भरत जोर जोर से रो रहा है, अभी जन्म हुआ अभी दूध पीने की अभी रोना शुरू हुआ, सीधा जाकर उधर उनको बाजू में सुलाया और भरत को जैसे सुलाया लक्ष्मण के बाजू में या शत्रुघ्न के बाजू में, भरत के बाजू में जैसे सुलाया तो तुरंत दोनों हंसने लगे। सुमित्रा दो बच्चों को जन्म दिया, मां होने पर भी नाम मां नहीं बनी, जन्म होते ही दोनों बच्चों को दे दिया। रामायण में तीन माताओं का वर्णन है, एक माता जो सोचती है केवल मेरा बच्चा ही अच्छा हो, दूसरों का बच्चा बर्बाद हो। एक माता सोचती है कि दुनिया कोई भी कुछ भी कोई भी बोले लेकिन मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। तीसरी माता क्या सोचती है, जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे रहे, मेरे बच्चों कुछ भी हो जाए लेकिन दूसरा डर खुद 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 होना चाहिए, मेरा बच्चा बड़ा भी हो दूसरों के लिए हित करे। इसके विषय में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन अभी इसके अंदर नाम बड़ा राम लक्ष्मण भरत, क्योंकि ये लीला के दृष्टिकोण से राम लक्ष्मण भरत, क्योंकि राम के साथ में लक्ष्मण हमेशा है और भरत के साथ शत्रुघ्न हमेशा है। भले ही जन्म लेने का सीरीज इस प्रकार नहीं था, इसके विषय में तत्व कहा गया है। आचार्य ने कहा राम कौन, जैसे हम आपको कहें वेद, स्वयं वेद रामायण के रूप में आया, जैसे भगवान राम के रूप में जैसे आए वही वेद रामायण के रूप में आया। वेदों में चार पुरुषार्थ, क्या है वो चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। और रामचंद्र कौन है, रामचंद्र है धर्म, रामो विग्रहं धर्मः, और लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः अर्थ, भरत कौन है, भरणात् भरतः, शत्रुघ्न कौन है, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, शत्रुघ्नो है जो नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रुओं को जो मारता है उसको शत्रुघ्न कहा गया है। और लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मण लक्ष्मण भरणात् भरतः, जो भार को उठाता है वो भरत है। देखिए पूरा रामायण इन चार लोगों के ऊपर आधारित है, चार कौन है जानना जरूरी है। रामो विग्रहान धर्मः, अभी राम के बाद में अगर भरत को रखेंगे समस्या हो जाती है। भरत कौन, याद हमने विघात धर्म अर्थ का मोक्ष मतलब त्याग। अगर धर्म के बाद में त्याग आता है, मतलब दूसरे शब्दों में जैसे आपने धर्म को त्याग कर दिया केवल पाप, इसलिए दोनों साथ में नहीं रख सकते। धर्म को, धर्म की सेवा में किसको लगाना चाहिए? अर्थ को लगाना चाहिए, इससे धर्मार्थ। अर्थ का एकमात्र प्रयोजन है धर्म की रक्षा। और जैसे अर्थ और किसी की सेवा में लगता है निश्चित उत्पात मचाता है। वही अर्थ वही धन दुख का कारण बनता है संसार में। धन का एकमात्र उपयोग है कामस्य नैन्द्र प्रीति लाभो जीवित यावत। और धर्म किसके लिए है? धर्म की रक्षा कैसे होगी? अर्थ के द्वारा होगा। इसलिए लक्ष्मण जो है वो राम के साथ में है, राम की सेवा करने के लिए है। लक्ष्मण कौन है? अर्थ है। लक्ष्मण हो लक्ष्मीवर्धन। और जैसे हमारी अर्थ को हमारी कामनाओं को पूर्ण करने में लगाएंगे, यानी जैसे इधर काम कौन है? हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के अर्थ को लगाएंगे कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत्। जीवस्य तत्व जिज्ञासा अर्थो यस्य कर्मणि, भागवत में कहा गया है। इसलिए हमारा अर्थ जो है धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी अर्थ जो है वो इंद्रिय प्रीति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये अर्थ को इंद्रिय प्रीति लगाएंगे, क्या हुआ? लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों साथ में जन्म लेने पर भी रो रहे थे, रोते रहेंगे। जिसकी कामना को पूर्ण करने के लिए लगाओगे अर्थ को, वो व्यक्ति भी रोएगा और आप भी रोएंगे। देखिए संसार में आजकल जो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो लगाते, परिवार में जो माता पिता है बच्चों को या पति है पत्नी को खुश करने के लिए अर्थ को जब लगाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति उस अर्थ के द्वारा संतुष्ट नहीं होता है, ना देने वाला ना उसको प्राप्त किया है। इसलिए अर्थ का एकमात्र उपयोग है धर्म की रक्षा। जब अर्थ का उपयोग किसी और चीज के लिए होता है, वही व्यक्ति का नाश का कारण बनता है। इधर धर्मार्थ काम मोक्ष, कामना किसकी करना चाहिए? एक ही चीज की कामना करना चाहिए, मोक्ष। इसलिए भरत जो है वो मोक्ष है, शत्रुघ्न काम है। राजा ने कहा क्या कहो, कभी भी कहना है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आप सीधा भी नहीं कह सकते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कहने की शैली। बचपन में हमको सिखाया गया था कभी भी जब बोलोगे राम लक्ष्मण बोलो, बाद में भरत शत्रुघ्न। क्योंकि अर्थ का एकमात्र उपयोग धर्म की रक्षा और एकमात्र कामना है मोक्ष। ये बात को वर्णन करने वाली बहुत अद्भुत लीला है, जहां कुछ लोगों को कैसे चारों का जन्म हुआ, किस प्रकार इन चारों का तालमेल था, प्रेम का एक दूसरे प्रति, खास करके लक्ष्मण राम के प्रति और इधर शत्रुघ्न जो है भरत के प्रति जो प्रेम है, उसको वर्णन करने वाले कुछ श्लोक है, उसको हम कल सुनेंगे। और साथ साथ में ये भी सुनेंगे राम ने क्या सिखाया हमको, लक्ष्मण ने क्या सिखाया हमको, भरत ने क्या सिखाया, शत्रुघ्न ने क्या सिखाया। अभी ये समझिए, भगवान जब प्रकट हुए वही वेद रामायण के रूप में प्रकट हुआ, भगवान राम के रूप में प्रकट हुए और वही वेद रामायण के रूप में प्रकट हुआ। जो वेदों में है रामायण में है, लेकिन किस रूप में है रामायण में? एक स्टोरी के रूप में, एक सरल ऐसा सुंदर कविता के रूप में है, काव्य के रूप में है। व्यक्ति सुनते सुनते वेदों का सारा सार समझ जाएगा, उपनिषद का सारा सार समझ जाएगा। हम क्या करते हैं, वेरी मच ग्रेटफुल। दो ऐसे महान कवि प्रकट हुए, व्यास जिन्होंने हमको महाभारत प्रदान किया, दूसरे वाल्मीकि जो हमको रामायण प्रदान किया। रामायण के द्वारा हमारे उदय में जो शत्रु है, हाँ कौन है वो शत्रु, काम, उसको नाश करने वाला एक महान साधन है रामायण। दूसरा अहंकार,
अहंकार को नाश करने वाला महान साधन है महाभारत। अहंकार कौन है? अहंकार प्रति कौन है? दुर्योधन है, इधर रावण काम। अहंकार और काम, इन दोनों को नाश करने वाले जो महान ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत है और उसको हमको पढ़ना चाहिए। तो आज हमने इन चार के परिचय धर्मार्थ काम मोक्ष विषय में कहा और आगे हम इनका विवेचन करते हुए हम कल रामायण का जो पहला श्लोक है भगवान राम से कुछ गुण है इत्यादि चीजों को चर्चा करते हुए बालकांड के कुछ अंशों को चर्चा करेंगे। बालकांड जो यज्ञ प्रधान कांड है, तीन यज्ञ प्राप्त होते हैं बालकांड में। भगवान का जन्म यज्ञ से हुआ है, जन्म होते ही विश्वामित्र का यज्ञ को पालन किया है, अंततः एक महायज्ञ समझिए सीता का विवाह, वो भी यज्ञ है। और उसके पहले रामायण की प्राकट्य कैसे हुआ उसको हम चर्चा करेंगे। रामायण का प्राकट्य वाल्मीकि के मुख से कैसे हुआ वो हम चर्चा करेंगे। क्रौंच मितनाथ, क्रौंच पक्षी का मृत्यु होते ही किस प्रकार वाल्मीकि के मुख से अपने आप ये बहुत अद्भुत श्लोक प्रकट हुआ, उन श्लोक की व्याख्या होने हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और कुछ भगवान रामचंद्र की जो प्राकट्य के पहले ऋषि शृंग का लीला, हो सकता है विश्वामित्र का जो लीला रामचंद्र के साथ कैसे वार किया, उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हर रोज एक शरीर रहेगी, बच्चों का प्रोग्राम रहेगा शुरुआत में, बीच में थोड़ा सा प्रवचन रहेगा, बाद में इन बच्चों के द्वारा ड्रामा प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे जितना हम इन लीलाओं को बच्चों के द्वारा ड्रामा नृत्य देखेंगे, हम रामचंद्र की लीलाओं को अच्छी तरह से आस्वादन कर सकते। और जैसे मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में मंगलाचरण होगा, ये रीति है। अंत में जब रामायण का प्रवचन अंत होता है उस समय मंगल श्लोकों उच्चारण किया जाता है। खास करके रामायण की कथा वो केवल सुनाने वाला, केवल सुनने वालों की नहीं, जहां राम कथा होती है समझना चाहिए सारे संसार कल्याण होता है। इसलिए राम कथा एक यज्ञ है और यज्ञ में भाग लेने वाला नहीं, ये सारा संसार को कल्याण करने के लिए यज्ञ हुआ होता है। इसलिए सभी लोगों का, संसार में सभी लोगों का हित चाहते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है रामायण के प्रवचन के अंत में। तो मैं थोड़ा उच्चारण करूंगा। तो स्वस्ति प्रदेभ्यः पालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिष गोब्राह्मणस्य शुभमस्कृत्यम् श्लोका समस्ताश्च नो भवन्तु काले वृषभजन्यनाथपीशिष्यशालिनीं देशोऽयं शोपरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः अदनाः सन्तु सदनाः सन्तु जीवन्तु सद्वृथां सताम् चरित्रं मृगनाथस्य शतकोटिकोटिस्थिरम् एकैकाक्षरं पुंसां महाभारतनाशनं शून्यं रामायणभक्त्या ह्यः पादं पद्मेव वा सयाजवनं स्थानं भ्रमणत् पूजिते सदा रामायणमध्याय रामचन्द्राय वेदसे गुणाताय नाथाय सीताय पतये नमः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते विस्त्रान्ते सम्भवत्तात् तते भवद्मङ्गलं यन्मङ्गलं सुपर्मस्या विनक्ताकल्पत्पुरा अदित्रिमङ्गलं प्रादात् तत्ते भवद्मङ्गलं त्रीन्विक्रमं प्रकामन्तो विष्णोर्मध्यतेजसा यद्दासमं यद्दासीत् मङ्गलं रामं तत्ते भवतु मङ्गलं कृत्वा सागरद्वीपा वेदलोकादिषष्टये मङ्गलानि महाबाहो दिशस्तु तव तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा ध्यात्मनात्मा प्रकृते स्वभावात् प्रोमयद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय कृत्यामि।